रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओ, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत और अनुवाद से करेंगे। कुरान मजीद के सूरह यूनुस की 47वीं, 48वीं और 49वीं आयतों की तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं कारी कासिम रजी।
بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और हर समुदाय के लिए एक रसूल है, तो जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनका फैसला न्याय पूर्वक कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आप सभी का स्वागत है। आज शुक्रवार है, अगस्त की 18, मुर्दाद माह की 27 और सफर की पहली तारीख। एक घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के उपरांत आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा, पत्र संसार। और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों ये थी रूपरेखा, कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अमीर अब्दुल्लाहियान ने बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की है। अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान के शत्रु बर्बाद हो चुके हैं। 50 लाख से अधिक श्रद्धालु अरबईन में करबला पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में चर्च पर हमले की अल अजहर ने निंदा की है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने शुक्रवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भेंटवार्ता की। यह मुलाकात सऊदी अरब के जद्दा नगर में हुई। ईरान के विदेश मंत्री की सऊदी अरब के युवराज के साथ ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले गुरुवार को रियाज में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इस भेंटवार्ता में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा था कि उनके देश के सारे ही मंत्रालय इस यात्रा की सफलता को सुनिश्चित बनाएंगे। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रु बर्बाद हो चुके हैं। आयतुल्ला सैयद अहमद खातमी ने कहा है कि ईरान के शत्रुओं ने इस देश के विरुद्ध जो कुछ भी करना था कर लिया, किंतु सब कुछ परिणामहीन रहा। उन्होंने कहा कि हालिया शांति के दौरान उनका कहना था कि हम बर्बाद करने आए हैं, जबकि वे खुद ही बर्बाद हो गए। तेहरान के इमाम जुमा ने गुरुवार को IRGC के कमांडरों द्वारा इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई के साथ भेंट की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता के कथनानुसार IRIGC या सिपाही पासदारान इस समय दुनिया में आतंकवाद विरोधी सबसे सशक्त संगठन है। ईरान और तुर्की ने द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक ले जाने का फैसला किया है। ईरानी विदेश मंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार ने बताया है कि तुर्की और इस्लामी गणतंत्र ईरान के बीच व्यापार को बढ़ाकर $30 अरब तक किया जाएगा। मेहदी सफरी ने तुर्की के अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता के बाद गुरुवार को बताया कि तुर्की के साथ व्यापार को हर क्षेत्र में बढ़ाने को लेकर सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि तुर्की के अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता में द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित कई आयामों पर वार्ता की गई। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई है। इस वार्ता में ब्रिक्स में ईरान की सदस्यता के विषय पर चर्चा की गई। दोनों राष्ट्रपतियों ने आपसी संबंधों को विस्तार देने पर जोर दिया और व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और लॉजिस्टिक सेवाओं के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया। ब्रिक्स संगठन अगले महीने दक्षिणी अफ्रीका में अपनी शिखर बैठक में संगठन में नए सदस्यों को सदस्यता दिए जाने के विषय पर विचार विमर्श करेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला हालिया समझौता विश्व व्यवस्था क्षमा कीजिएगा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पूर्व अधिकारी ने क्षमा कीजिएगा 50 लाख से अधिक श्रद्धालु अरबईन को करबला में पहुंच रहे हैं। امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چہلم منانے کے لیے دنیا بھر سے 50 لاکھ سے ادھک شردالو پوتر نگر کربلا پہنچیں گے۔ عراق میں اربعین کارکرم کا آیوجن کرنے والی سمیتی کی اور سے بتایا گیا ہے کہ اس ورش اربعین میں کربلا آنے والے زائرین کی سنکھیا 50 لاکھ سے ادھک رہنے کی سمبھاونا ہے۔ 20 صفر سن 1445 ہجری قمری برابر 6 ستمبر سن 2023 کو امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ عراق میں صدیوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ امام حسین کے چہلم یا اربعین کے افسر پر اس دیش کے لوگ وبھن نگروں سے سینکڑوں کلومیٹر کی یاترا پیدل طے کر کے کربلا جاتے ہیں۔ ودیشوں سے آنے والے حسینی پوتر نگر نجف سے کربلا کی یاترا نشچت روپ سے پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ الازہر نے پاکستان میں چرچ پر حملے کی نندا کی ہے۔ مصر کے الازہر اسلامی شکشا کیندر نے پاکستان کے گرجا گھروں پر کیے گئے حملوں کی کڑے شبدوں میں نندا کی ہے۔ رشیا ٹوڈے کے انوسار الازہر نے گروار کو ایک بیان جاری کر کے اس پرکار کے کام کو اپرادھ بتایا ہے۔ اس بیان میں حملے کی نندا کرتے ہوئے اس میں لپت اتیوادیوں کے ورودھ نیائک کاروائی کی مانگ بھی کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اتیواد کے ورودھ ہیں۔ الازہر کے بیان کے انوسار پوتر قرآن کا آدیش ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے اپاسنا استھلوں کو سرکشت رکھا جائے اور ان کے ورودھ کارروائی نہ کی جائے۔ چرچ پر حملہ کرنے والوں نے ویسا ہی کام کیا ہے جیسا کہ پوتر قرآن کا انادر کرنے والوں نے کیا، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو دھرم، قانون اور نیتکتا کے ورودھ ہیں۔ الازہر کے بیان میں جس پرکار سے گرجا گھر پر آکرمن کرنے والوں کے ورودھ نیائک کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے، وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی پرکار کا کام ان لوگوں کے ورودھ بھی کیا جانا چاہیے جنہوں نے پوتر گرنتھ قرآن شریف کا انادر کیا ہے۔ امریکہ کے پورو راشٹرپتی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اب تیسری دنیا کے ایک دیش جیسا ہو گیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب امریکہ کا دیوالہ نکلنے جا رہا ہے۔ امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے بھیتر سڑکوں، ہوائی اڈوں یا کسی بھی دوسری چیز پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ امریکہ اب تیسری دنیا کے ایک دیش جیسا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری راشٹریہ مدرا کا مہتو گھٹتا جا رہا ہے، ہماری آرتھک شکتی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے انوسار وشو کی ریزرو مدرا کے روپ میں امریکی ڈالر کا پتن کسی بھی یدھ میں ہارنے سے بھی بری گھٹنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ڈالر کا ورچسو گھٹ رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اس سمے امریکہ نرک کی اور بڑھ رہا ہے، اب دنیا پر ہمارا ورچسو نہیں رہ پائے گا اور ہمارا آرتھک بول بالا بھی سماپت ہو جائے گا۔ امریکہ کے پورو راشٹرپتی ٹرمپ نے اس دیش کے ورتمان راشٹرپتی بائیڈن کے کریا کلاپوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی غلط نیتیوں کا ہی پریڑام ہے۔ افغانستان کی سطح پر قبضہ کرنے والے طالبان نے آزاداری کرنے کے کارن اس دیش کے کئی شیعہ مسلمان یوواؤں کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ محرم سے پہلے طالبان نے افغانستان میں آزادی سے آزاداری کرنے کا وچن دیا تھا۔ اس کے باوجود محرم کا جلوس نکالنے والوں کے ساتھ طالبان کے سرکشا بلوں نے ہنسک ویوہار کیا اور کئی آزاداروں کو گرفتار کر لیا۔ ملیشیا میں ایک چھوٹے ویمان کو سڑک پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی لیکن وہ دھوست ہو گیا اور اس پر سوار 10 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ملیشیا کی پولیس نے بتایا ہے کہ یہ گھٹنا گروار کو ہوئی جب سیلانگور پرانت میں اپنے گنتویہ کی اور جانے والے ویمان کو سڑک پر لینڈنگ کرنی پڑی۔ گھٹنا پرانت کی راجدھانی میں ہوئی۔ ویمان پر 8 لوگ سوار تھے جن میں 6 یاتری اور 2 کرو ممبر تھے، جبکہ سڑک پر یہ ویمان لینڈنگ کے سمے موٹر سائیکل سے ٹکرایا اور موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के इस्लामी फोर्स सिपाही पासदारन के कमांडरों ने कल इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने विभिन्न क्षेत्रों में सिपाही पासदारन IRGC के प्रयासों की सराहना व प्रशंसा की। गुरुवार को रियाद में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने सऊदी समकक्ष से मुलाकात की, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते।
आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो।
ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। ईरान के इस्लामी फोर्स सिपाही पासदारन के कमांडरों ने कल इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने विभिन्न क्षेत्रों में सिपाही पासदारन IRGC के प्रयासों की सराहना व प्रशंसा की। सर्वोच्च नेता ने सिपाही पासदारन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस समय सिपाही पासदारन पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सबसे संगठित इकाई में परिवर्तित हो गया है। समीक्षा पेश है साथ ही कायम रिजवी।
ईरान की इस्लामी फोर्स सिपाही पासदारन के कमांडरों ने गुरुवार को इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने विभिन्न क्षेत्रों में सिपाही पासदारन के प्रयासों की सराहना की। सर्वोच्च नेता ने सिपाही पासदारन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर संकेत करते हुए कहा, वर्तमान समय में सिपाही पासदारन पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सबसे संगठित इकाई में परिवर्तित हो गया है। सिपाही पासदारन जो काम अंजाम दे रहा है, उस जैसे कार्य को अंजाम देने में दुनिया की बहुत बड़ी सेनाएं भी अक्षम हैं। 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। उसी वर्ष के अप्रैल महीने में ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने सिपाही पासदारन के गठन का आदेश दे दिया था। अपने गठन के आरंभ से लेकर आज तक सिपाही पासदारन न केवल रक्षा बल्कि गैर रक्षा के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभा चुका है। आज दुश्मन जो ईरान पर हमले का साहस नहीं कर पा रहा है, उसकी एक वजह IRGC की मौजूदगी है। इराक द्वारा ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के दौरान सिपाही पासदारन ने अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। इसी तरह आज सिपाही पासदारन मिसाइल और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में जो असाधारण प्रगति कर रहा है, उससे ईरान के दुश्मन बहुत क्रोधित है। वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक ईरान में सिपाही पासदारन जैसे बल मौजूद रहेंगे, तब तक वे ईरान पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकते। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने यह सोचकर ईरान पर हमला किया था कि मात्र कुछ ही दिनों के भीतर वो इस्लामी क्रांति को खत्म करके ईरान पर कब्जा कर लेगा, परंतु 8 वर्षों का समय बीत जाने के बावजूद उसका सपना पूरा नहीं हो सका और अंत में उसका और उसकी तानाशाही दोनों का ही अंत हो गया। सद्दाम के हमलों को नाकाम बनाने और उसकी अपेक्षाओं पर पानी फेरने में सिपाही पासदारन की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इस समय इराक और सीरिया में आतंकवादियों से मुकाबला करने में सिपाही पासदारन ने जो भूमिका निभाई है, वो किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। सिपाही पासदारन ने ही देशों में दाइश और दूसरे आतंकवादी गुटों के षड्यंत्रों को विफल बनाया है। यदि पासदारन के प्रयास न होते तो इस समय इराक और सीरिया में दाइश एवं दूसरे आतंकवादी गुटों की सरकारें होती। दाइश जैसे आतंकवादी गुटों से मुकाबला करना और उनका सफाया करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये वो काम है जिसे अंजाम देने में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अक्षम रही हैं। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के उस बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिपाही पासदारन ने उन कार्यों को अंजाम दिया है जिनको अंजाम देने में दुनिया की बड़ी शक्तियाँ अक्षम दिखाई दे रही हैं।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
گروار کو ریاض میں ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سعودی سمکک سے ملاقات کی، جس میں وبھن وشیوں پر وچاروں کا آدان پردان کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ایک سنیکتا پریس کانفرنس ہوئی، جس میں سعودی ودیش منتری نے کہا کہ آج کی ہماری ملاقات دوی پکچیے سمبندوں کے پریپیکش میں ہوئی۔ اسی پرکار سعودی ودیش منتری نے کہا کہ ایسا سمجھوتا کیا جانا چاہیے جو چھیتر میں شانتی و سرکشا میں مضبوطی کا کارن بنے۔ فیصل بن فرحان نے سنیکت پریس کانفرنس میں دونوں دیشوں کے پرتندھیوں کی ایک دوسرے کے دیشوں میں گتیویدھیوں کے آرمبھ ہونے کی اور سنکیت کیا، اور کہا سعودی عرب ایرانی راشٹرپتی کی یاترا کی پرتیکشا میں ہے اور ہمارے سمبندھوں میں وستار کا آدھار اسلامی بندھت اور سنیکت ہت ہیں۔ سمیکشا پیش گئے ساتھی احمد عباس۔
گروار کو ریاض میں ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سعودی سمکش سے ملاقات کی، جس میں وبھن وشیوں پر وچاروں کا آدان پردان کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ایک سنیکت پریس کانفرنس ہوئی، جس میں سعودی ودیش منتری نے کہا کہ آج کی ہماری ملاقات دوپکشی سمبندوں کے پریپریکش میں ہوئی۔ اسی پرکار سعودی ودیش منتری نے کہا کہ ایسا سمجھوتا کیا جانا چاہیے جو کھیتر میں شانتی و سرکشا میں مضبوطی کا کارن بنے۔ فیصل بن فرحان نے سنیکت پریس کانفرنس میں دونوں دیشوں کے پرتندھیوں کی ایک دوسرے کے دیشوں میں گتیویدھیوں کے آرمبھ ہونے کی اور سنکیت کیا، اور کہا کہ سعودی عرب ایرانی راشٹرپتی کی یاترا کی پرتیکشا میں ہے اور ہمارے سمبندھوں میں وستار کا آدھار اسلامی بندھت اور سنیکت ہت ہیں۔ ایران کے ودیش منتری نے بھی اس سنیکت پریس کانفرنس میں کہا کہ اس بات سے ہم خوش ہیں کہ ریاض میں ہم نے رچناتمک بات چیت کی۔ ایران اور سعودی عرب اسلامی جگت کے دو مہتوپورن دیش ہیں اور دونوں دیشوں کے سمبندھ وستار کی دشا میں اگرسر ہیں۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم سمست کھیتروں میں سہیوگ کو وسترت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھیتر کی استھانی سرکشا پر بل دیتے ہیں، یعنی وہ سرکشا جو کھیتری دیشوں کی اور سے کی جائے۔ ودیش منتری نے بل دے کر کہا کہ ہم دوستی اور سہیوگ کے لیے پڑوسیوں کی اور ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنے سمبندھوں کو وسترت کر رہے ہیں، اور اسی نیتی کے پریپریکش میں ہم اپنے سمبندھوں کو سعودی عرب، عراق، کویت، قطر اور سنیکت عرب امارات کے ساتھ وسترت اور مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیتر کی سرکشا کھیتر کے سمست دیشوں سے سمبندھت ہے اور ہم نے آج اسلامی جگت سے جڑے کچھ وشیوں کے بارے میں وستار سے بات کی۔ ودیش منتری نے فلسطین اور قدس کو اسلامی جگت کے دو مہتوپورن مدے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور فلسطین کا سمرتھن جاری رکھیں گے۔ اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ زائونی شاسن اسلامی جگت میں پھوٹ ڈالنے اور دشمنی کرانے کے اپنے پریاسوں کو جاری رکھے گا، اور ہم اس شاسن کی گتیویدھیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کے اپمان کے خلاف ایران اور سعودی عرب سہت دوسرے اسلامی دیشوں کا سمان درشٹی کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کھیتریہ معاملوں کے سمادھان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ سہیوگ کر سکتا ہے، اور ہم اس بات سے پرسن اور آشوست ہیں کہ یہ ملاقاتیں اور بھیٹ وارتائیں اسلامی راشٹروں اور اسلامی جگت کی ایکتا میں مضبوطی کا کارن بنیں گی۔ بہرحال ایران اور سعودی عرب اسلامی جگت کے مہتوپورن دیش ہیں اور دونوں دیشوں کے مدھے بڑھتے سمبندھ نہ کیول کھیتریہ دیشوں بلکہ پورے اسلامی جگت کے ہت میں ہیں، اور یہ سمبندھ دوسرے وشیش کر اسلامی دیشوں کے لیے آدرش اور پریرنا کا سروت بن سکتے ہیں۔
جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں پر اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور جو سمسیائیں ہیں وارتا دوارا ان کا سمادھان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شنگر سے سپت محمد حسن۔
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر سمسیا کے حوالے سے نئی دہلی کو چاہیے کہ وہ اپروچ میں تبدیلی لائے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ بدل سکتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور جو بھی سمسیائیں ہیں ان کا سمادھان وارتا کے دوران ڈھونڈنے کا پریاس کریں۔ سری نگر میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے اپ پرمکھ اور بھوتپورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے کہا کہ موجودہ رجیم جموں کشمیر میں اتہاس کو سماپت کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اتہاسک بلڈنگوں سے ان کے دادا شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا نام مٹایا جا رہا ہے، اور میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں سفل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج ان کی پرشاسن ہے، کل دوسری پرشاسن ہوگی، اور جب دوسری پرشاسن ہوگی وہ دوبارہ یہ نام وہاں پر جوڑ دیں گے، پرنتو اس سے یہ بات سدھ ہوتی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے بھی یہ بات سویکار کر لی ہے کہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ ہی ایسا ویکتی بھی تھا جنہوں نے بھارت کے ساتھ ایکسیشن کیا ہے، اور الحاق کر کے اس نے ایک بہت بڑا ویکتی ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب بھارت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایسا کہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا سمان کریں، پرنتو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سمان نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 ورشوں سے بہت زیادہ ویکتی سامنے لائے گئے، کبھی یہ کہا گیا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے لیکن زمین استر پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ عمر عبداللہ نے اس اوسر پر کہا
آپ عمارتوں سے ان کا نام ہٹا سکتے ہو، دلوں سے مٹا نہیں سکتے ہو۔ آپ اگر ایس کے آئی سی سی سے شیر کشمیر کا نام مٹاؤ گے، یا کرکٹ سٹیڈیم سے مٹاؤ گے، یا ہسپتال سے مٹاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا سچ آپ چھپا نہیں سکتے ہو۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ہی اس سچ کو لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کیا۔ ہٹائیے آپ بلڈنگ سے، آج ہٹاؤ گے کل دوسری حکومت آئے گی وہ واپس لگائیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا شیر کشمیر کا نام ہٹے گا نہیں، اس کے نام کو یہاں سے ہٹانے والے جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں گے، ان کو کوئی یاد نہیں کرے گا، ان کا نام تک یہاں رہے گا نہیں، لیکن شیر کشمیر کا نام جو ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں پہ چھایا رہے گا۔
اس بیچ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے نرنے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہی اپنی اگلی راجنیتی طے کریں گے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
تو شروتو، سپتے محمد حسن کی اسی رپورٹ کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریہ یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم کے بعد پیش ہے آپ کا اپنا من پسند کاریکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔ دوستوں، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ اپنی دیدی مریم مہر دادی
اور بھائی احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکوشل ہوں گے اور اپنا من پسند کارکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے۔
شروتو، آج بھی آپ کے ای میل، آپ کے کمنٹس، آپ کے وچار کارکرم کی شوبھا بڑھائیں گے، اور دیدی ایک اچھی سی سنسکرتی سے جڑی خبر سنائیں گے۔
جی، تو سب سے پہلے ای میل پہ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ مہدیہ مٹھ ضلع مظفر پور سے رجنیش کمار لکھتے ہیں کہ آج کل آپ کے پرسارن ہم نیمت پروک سن رہے ہیں اور ریڈیو پر 25 میٹر بینڈ یعنی 11,860 کلو ہرٹس پر پرسارن بھی صاف سنائی دے رہے ہیں۔ 28/7/2023 روز شکروار کو وشو سماچار اور راجنیتک چرچا کے ساتھ ساتھ پتر سنسار اور وگیان کی ڈگر کا کاریکرم کافی روچک بھرا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ وگیان کی ڈگر کے تحت وگیان کے کھیتر میں ایران میں ہو رہی ترقی کے بارے میں چرچا کی گئی، جو مجھے کافی گیان وردھک لگی۔ اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیواد۔
رجنیش کمار جی، کاریکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کاریکرم دیدی آج کا جو سمے ہے اگر آپ دیکھیے تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔
جی،
اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں جو ہر یوا کو، ہر دیکھنے والے کو آکرشت کرتی ہیں، لیکن اس میں کچھ ذمہ دار یوا اور شروتا اور درشک ایسے ہیں جو کام کی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منورنجن ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیا جہان کے خبروں سے अवगत होते रहें, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहें, तो ये देखकर अच्छा लगता है। इस लिहाज से हमारे ये श्रोता, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं कि ये चीज़ हौसला बढ़ाने वाली है। आशा ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से अपने विचार हमें भेजते रहेंगे रजनीश कुमार जी।
जी, और ऐसे ही एक और हमारे एक श्रोता मित्र का पत्र है इसी संदर्भ में। जी
जी,
लिखते हैं कि ये सैयद राशिद रजा है कर्नाटका से। लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, आप इसी तरह शैतान बुजुर्ग अमरीका और इसराइल के गुलाम देशों के चेहरे से नकाब उतारते रहिए। राजनीतिक चर्चा मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, समाचार से भी लाभान्वित होता रहता हूँ, वेब से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी कार्यों के लिए शुक्रिया।
राशिद रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम पत्र संसार में। दीदी, ये बड़ी खुशी की बात है कि कर्नाटक से हमें ये ईमेल भेजा है राशिद रजा साहब ने, और बड़ी अच्छी हिंदी में भेजा है, ये भी खुशी की बात है। इससे ये लगता है कि देखिए, जो कर्नाटक का कर्नाटक राज्य है भारत का
जी,
आप बेहतर जानते हैं, हिंदी पट्टी में तो नहीं आता है, हिंदी बोलने वाले लोग अलबत्ता वहाँ पर रहते हैं। अलग अलग इलाकों की बात है, जो इलाके मध्य प्रदेश के करीब हैं, मध्य प्रदेश की सीमा के करीब हैं, वहाँ हिंदी ज़्यादा लोग बोलते समझते हैं। बहरहाल, ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है कि इतनी अच्छी हिंदी में हमें ईमेल भेजा है राशिद रजा साहब ने। शैतान अकबर के बारे में बात की, शैतान अकबर अमेरिका को कहा जाता है, और इमाम खुमैनी ने अमेरिका को शैतान अकबर कहा था, सबसे बड़ा शैतान, महाशैतान, और ये उपाधि आज तक प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। आज तक ये पता है कि अमेरिका जिस जगह कदम रखता है वहाँ पर दुष्टता फैलाता है, वहाँ अशांति फैलाता है, आतंकवाद वहाँ पर पनपता भड़कता फैलता है। इसकी मिसालें आपको अफगानिस्तान के इलाके में मिल जाएंगी, इसकी मिसालें आपको इराक और सीरिया में मिल जाएंगी, जहाँ पर अमेरिका ने अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, स्थापित करने की कोशिश की, और अशांति फैलाई, देशों को लड़ाया, हिंसा पैदा की, बिखराव, विभाजन, इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है अमेरिका। तो वहाँ शैतान उसको कहा था, शैतान ने अकबर सबसे बड़ा शैतान, और बिल्कुल सही कहा था इमाम खुमैनी ने।
अब बारी है ईरानी संस्कृति से
जुड़ी खबर की, और आप ईमेल के बाद ये पढ़ती हैं, और बड़ा अच्छा हिस्सा है कि आप संस्कृति से जुड़ी खबर सुनाती हैं। जी दीदी
जी, तो आज की संस्कृति से जुड़ी खबर में हम गोलेसन पैलेस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखने की अनुमति के लिए कौन कौन से मानदंड पूरे करने पड़े इसके बारे में बताएंगे।
जी,
तो पिछले पत्र संसार में हमने बताया था, तो कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी में ईरान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान गुलेसन पैलेस फारसी कला और वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इमारत उस समय की उभरती हुई यूरोपीय शैलियों के साथ सिद्ध देर काजार युग कला के तत्वों को जोड़ती है। चेक किया गया है कि पहला मानदंड यूरोपीय निर्माण प्रौद्योगिकियों के अनुकूल के साथ साथ यूरोपीय शैलियों और रूपांकनों के साथ फारसी कला और वास्तुकला का महल का एकीकरण था। ऐसे समय में जब ईरानी अपने यूरोपीय समकक्षों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे थे, गुलेसन पैलेस इन दो अलग अलग दुनियाओं के विलय के प्रतीक के रूप में खड़ा था। दूसरा असाधारण मानदंड महल का कलात्मक मूल्य का चरम स्तर है। न केवल महल में काजार युग के सबसे भव्य और विस्तृत रूपांकनों और शैलियों की विशेषता है, इसे अक्सर काजार कला के शिखर के रूप में उद्भूत किया जाता है। भले ही महल के कई हिस्सों को भविष्य के राजाओं द्वारा नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन आज जो बचा है वो उस समय की सबसे अच्छी तरह से रखी गई कलाकृतियां हैं। तीसरा मानदंड पैलेस की वास्तविक इमारतें हैं। इमारत को आधुनिक यूरोपीय निर्माण विधियों और सामग्रियों के साथ साथ पारंपरिक ईरानी वास्तुकला और इंजीनियरिंग दोनों का उपयोग करके बनाया गया था। इन नए निर्माण तत्वों को पेश करने वाली पहली इमारत होने के नाते इमारत ईरान की संक्रमणकालीन अवधि का एक बेहद अनूठा प्रतीक है। वर्तमान में भवन का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है। इसे 2013 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थलों में प्रस्तुत किया गया था।
और श्रोताओ, अब बारी है आपके कमेंट्स की, तो देखते हैं कि दीदी ने कौन से कमेंट्स चुने हैं
जी।
हमारी वेबसाइट से।
एमकेओ आतंकवादी गुट के खिलाफ ईरान का बड़ा कदम, इस पर अशरफ लिखते हैं, घिनौने कुख्यात एमकेओ यूरोप में नहीं घूम रहे हैं बल्कि वे बेघर और राज्य विहीन हैं और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें अल्बानिया से बाहर खदेड़ा जा रहा है। इस प्रकार वे वास्तव में खोए हुए शैतान हैं जिन्हें निकाला जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। शैतान मरियम रज्जवी स्वयं राज्यविहीन और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती है। उम्मीद है कि जल्द ही वो ईरानी जाल में फंस जाएगी और उसे न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
जी दीदी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसमें एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि अल्बानिया में इन आतंकियों का ठिकाना अब सुरक्षित नहीं रह गया और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। इनका ठिकाना अल्बानिया में जो था उसका एक हिस्सा वो था जहाँ से वो साइबर अटैक किया करते थे ईरान के खिलाफ जासूसी किया करते थे, ईरान के खिलाफ आतंकी गतिविधियाँ वहाँ से चलाया करते थे। ये चीज़ें ये अल्बानिया में बैठ के कर रहे थे ये इस ग्रुप के लोग। इससे पहले ये ग्रुप इराक में सद्दाम के शासनकाल में सद्दाम की छत्र छाया में फला फूला और वहाँ पर उसने ख़ुद को मजबूत किया और ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में इसने बहुत भयानक, बड़ी हृदय विदारक घटनाएं और त्रासदियाँ इस संगठन की वजह से हुई और इसका बहुत मुख्य रोल रहा। ये सद्दाम के साथ संगठन मिल गया था और दीदी ये अशरफ छावनी वहाँ पर थी, उसमें ये रहा संगठन कब तक, जब तक के अमेरिका ने हमला नहीं कर दिया। अमेरिका के हमले के बाद सद्दाम का शासन जब गिर गया उसके बाद फिर एक समय आया कि जब इन आतंकियों को खुद अमेरिका के सहयोग से अल्बानिया में पहुँचाया गया। अब ये अल्बानिया में भी आतंकी गतिविधियाँ कर रहे थे, वहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो अब ये लोग वहाँ से अपना ठिकाना छोड़ के हट रहे हैं और ख़बरें ये हैं कि अब ये कनाडा में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो भी शरण देगा, जो भी देश शरण देगा, उसे याद रखना चाहिए कि आतंकियों को शरण देना और उनकी मदद करना हमेशा उस देश के लिए भी नुकसानदेह रहता है जो शरण बनता है। और श्रोताओं, अब बारी है आप में से एक श्रोता के विचार सुनने की, दीदी नाम का ऐलान करेंगे।
जी, ये है हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता साजिद मुजावर और ये महाराष्ट्र से हैं।
हिंदी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैं नियमित हिंदी कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत बेहतर होते हैं, मैं रात का कार्यक्रम सुनता हूँ। वैसे मेरा ताल्लुकात, चूंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके यहाँ से जो राजनीतिक चर्चा होता है वो मैं बहुत चाप से सुनता हूँ, बहुत गौर से सुनता हूँ। वैसे आपके जितने भी कार्यक्रम है सब बेहतर है। ईरान के बारे में जो बताया जाता है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताया जाता है, वो कार्यक्रम बहुत ही मालूमती और ज्ञानवर्धक होते हैं। और खास करके चूंकि हम लोग बचपन में फारसी पढ़ने का मौका मिला, वैसे जब कॉलेज में गया तो फारसी से उतना लगाव नहीं था, मगर हाई स्कूल तक फारसी पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद उस जुबान से कोई ताल्लुकात नहीं था, मगर रेडियो तेहरान सुनने के बाद एक शौक पैदा हुआ। श्रोताओं के पत्रों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो तो सारे श्रोताओं के लिए बेहतर है, तो मैं भी उसको बहुत चाप से सुनता हूँ, क्योंकि इसमें श्रोताओं के कमेंट सजेशन सुनने को मिलता है, प्रोग्राम कैसा है या उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, तो इस कार्यक्रम को मैं बराबर सुनता हूँ। इधर बहुत दिनों से मैं पत्र नहीं लिख पाया हूँ, उसमें मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था, मगर कार्यक्रम सुन लेता हूँ और वैसे सारे कार्यक्रम अच्छे हैं आपके।
तो भैया हमारे पास एक मिनट का टाइम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक कमेंट बहुत ही जरूरी है, मैं पढ़ दूँ। सीरिया में दाइश के ताबड़तोब हमलों के पीछे कौन है? इस पर जदीद लिखते हैं, दाइश आतंकवादी या विद्रोही नहीं है, वे सीरिया में तबाही मचाने के लिए अमेरिका द्वारा रखे गए प्रशिक्षित अपराधी हैं। ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम अफ्रीका नाइजर में बुकोनो फासो और माली के पास में फ्रांसीसी प्रशिक्षण शिविरों जिन्हों जेलों के रूप में जाना जाता है, इसमें ऐसे अपराधी हैं।
देखिए दीदी, वो बाकी जो फ्रांस और ये अफ्रीकी देश के बारे में वो जो प्रसंग था वो मेरे लिए बहुत स्पष्ट नहीं है वो टिप्पणी। इससे पहले जो दाइश के हमलों की बात है, देखिए दाइश की कमर तो तोड़ दी गई है, वो इक्का दुक्का है, हमले करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ आतंकी संगठन है। एक आतंकी संगठन जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है वो भी कभी हमले करता है, इसके अलावा अमेरिका भी वहाँ आतंकियों से सहयोग कर रहा है, तो ये समस्या वहाँ पर मौजूद है जिसे हल होना है और हल होगी। तो श्रोताओ, कार्यक्रम पत्र संसार अब यहीं पर समाप्त होता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम था पत्र संसार। आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें लिख भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर के कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर गलाला असगरी को उनकी सबसे मूल्यवान सेवाओं और पूर्वी भूमध्य सागरीय में पोषण व खाद्य संबंधी महामारी विज्ञान के अध्ययन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए 2019 में शोषा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये शोधकर्ता पोषण संकाय से स्नातक हैं और शहीद बहिश्ती चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के एंड्रोक्राइन एंड मेटाबॉलिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोधकर्ता हैं, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष रूप से पोषण और भोजन सेवन के क्षेत्र में बहुमूल्य सेवाएं अंजाम दी हैं। इस शोधकर्ता ने मधुमेह और मोटापे के विषयों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है।
इस युवा शोधकर्ता के वैज्ञानिक और शोध रिकॉर्ड में पोषण और ग्रंथियों के क्षेत्र में 100 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में ग्रंथियों के रोगों में पोषण पर 70 से अधिक लेख प्रकाशित करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना जैसी चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुलपति शोध से अनुदान प्राप्त कर पोषण विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखने में सहयोग में भी ये शोधकर्ता आगे रही हैं।
इस शोधकर्ता को हासिल पुरस्कारों और सम्मानों में 2019 में राजी महोत्सव में चयनित छात्र के रूप में चयनित होने, 2009 में विश्वविद्यालय अनुसंधान महोत्सव में चयनित स्नातकोत्तर छात्रा, 2015 अनुसंधान में डॉक्टरेट छात्रा के रूप में चयनित होने जैसे सम्मानों का उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ ही ये शोधकर्ता 1997 में अलबुर्ज फाउंडेशन एंडोमेंट फेस्टिवल के दौरान एक चयनित छात्रा और एलिट फाउंडेशन की सदस्य भी रही हैं।
डॉक्टर शूशा फाउंडेशन फेलोशिप अवार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक और कार्यकारी रिकॉर्ड होते हैं और जो अंग्रेजी भाषा में टॉफल और IELTS की डिग्री रखते हैं। पांचवें नैनो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ओलंपियाड के रजत पदक विजेता मोहम्मद रजा मजीदी ने 47वें जेनेवा आविष्कार महोत्सव का स्वर्ण पदक जीता। इस शोधकर्ता को जेनेवा आविष्कार महोत्सव की समिति द्वारा एक्सरे से बचाने वाला मरहम बनाने के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए नामांकित किया गया था।
इस शोधकर्ता के अनुसार इस मरहम में एक्सरे के खिलाफ सुरक्षात्मक गुण होते हैं और त्वचा की सतह को इन किरणों के विकिरण से बचा सकते हैं। इसके अलावा इस मरहम में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और ये त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इस आइंटमेंट का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग में किया जा सकता है और इस तकनीक का इस्तेमाल वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ वेव इंटरफेरेंस की समस्या हो।
इस शोधकर्ता के मुताबिक वनस्पति तेल वाली इस तकनीक पर शुरुआती परीक्षण किए जा चुके हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से परमिट लेने के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद व्यवसायीकरण का दौर शुरू किया जा सकता है। स्वर्ण पदक के अलावा इस शोधकर्ता को इन प्रतियोगिताओं का विशेष पुरस्कार भी मिला है, एक पुरस्कार जो विशेष रूप से 40 देशों द्वारा चयनित परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। ये शोधकर्ता जो गुणवंत विश्वविद्यालय में चौथे वर्ष की मेडिकल छात्र थी, दक्षिणी कोरिया के सियोल में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इन्वेंटर्स में रजत पदक जीता है। साथ ही अमरीका में सिलिकॉन वैली इन्वेंशन फेस्टिवल में कांस्य पदक जीता है।
दोस्तों, एक नॉलेज बेस्ड कंपनी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में कामयाबी हासिल की है जो आने वाले टेक्स्ट मैसेज को सुनने योग्य बनाता है। ये फीचर नेत्रहीन लोगों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। आजकल सूचनाओं, अनुरोधों और अपीलों इत्यादि के लिए पढ़ने योग्य संदेश भेजने के प्रसार के साथ साथ विभिन्न संदेश वाहकों की वृद्धि की वजह से लोग उन्हें पढ़ने में बहुत ही समय व्यतीत करते हैं। स्मार्टफोन पर टेक्स्ट मैसेज पढ़ना लोगों के लिए एक मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के साथ नेत्रहीनों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। यातायात विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं लोगों का मोबाइल फोन और टेक्स्ट मैसेज पर ध्यान देने के कारण होती हैं।
ये नॉलेज बेस कंपनी जिसके सदस्य ने शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, समाज की जरूरतों के अनुसार इन समस्याओं को कुछ हद तक हल करने के लिए स्मार्टफोन के लिए टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन का निर्माण किया। फारसी टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरह से प्राकृतिक आवाज़ के साथ भेजे गए टेक्स्ट संदेशों को आसानी से पढ़ता है और इसके साथ मोबाइल स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
ये सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट रीडर सेवा का उपयोग करता है, दूसरे संदेश भेजने वालों के संदेशों को पढ़ने की क्षमता भी रखता है। इस उत्पादन की अन्य विशेषताओं में हम कॉल रीडर का उल्लेख कर सकते हैं जो आपको इनकमिंग कॉल आने पर संपर्क का नाम बताता है। उत्पादन के दूसरे भाग में वांछित विषय वस्तु को अन्य उपकरणों के साथ साझा करना भी इसमें संभव होता है।
टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार मौजूदा दवा मेटफॉर्मिन के साथ लेराग्लूटाइड दवा का उपयोग टाइप 2 मधुमेह वाले बच्चों के उपचार पर एक मजबूत रास्ता है और इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। शोध दल के एक सदस्य के अनुसार वयस्कों के लिए मधुमेह की यह दवा अच्छा काम करती है और बच्चों और किशोरों पर हमारे परीक्षणों में इसका प्रभाव काफ़ी हद तक दिख रहा है। वर्तमान समय में केवल दो दवाएं मेटफॉर्मिन और इंसुलिन बच्चों में टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए स्वीकृत हैं।
इस शोधकर्ता के अनुसार हमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों में टाइप 2 मधुमेह के दवा उपचार के लिए अन्य विकल्पों की तत्काल आवश्यकता होती है। पुष्टि होने की स्थिति में टाइप 2 मधुमेह वाले 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों में इस प्रकार का नया उपचार इंसुलिन का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस अध्ययन में मधुमेह से पीड़ित 66 बच्चों को 26 सप्ताह तक मेटफॉर्मिन गोलियों के साथ लिराग्लूटाइड इंजेक्शन दिया गया। इस अवधि के दौरान अन्य 68 बच्चों को प्लेसिबो के साथ मेटफॉर्मिन की गोलियां भी दी गईं। इन बच्चों की उम्र 10 से 17 साल के बीच थी। इस अध्ययन में शामिल इन दो ग्रुप्स की तुलना करने पर यह पाया गया कि मेटफॉर्मिन के साथ लिराग्लूटाइड प्राप्त करने वाले ग्रुप के उपचार के परिणाम काफी बेहतर थे।
दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने तुलसी के फायदे पर चर्चा की थी। तुलसी के इतने ज्यादा फायदे हैं कि उन्हें एक दो कार्यक्रम में समेटा नहीं जा सकता। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तुलसी की पत्तियों से बने शरबत को आधी से डेढ़ चम्मच की मात्रा में बच्चों को तथा 2 से 4 चम्मच तक बड़ों को सेवन कराने से खांसी, श्वास, कुकुर खांसी और गले की खराश में लाभ होता है।
इस शरबत में गर्म पानी मिलाकर लेने से जुकाम तथा दमा में बहुत लाभ होता है। इस शरबत को बनाने के लिए कास, श्वास, तुलसी पत्र यानी मंजरी सहित 50 ग्राम अदरक 25 ग्राम तथा काली मिर्च 15 ग्राम को 500 मिली जल में मिलाकर काढ़ा बनाएं। चौथाई शेष रहने पर छानकर 10 ग्राम छोटी इलायची बीजों के महीन चूर्ण मिलाकर 200 ग्राम चीनी डालकर पकाएं। एक तार की चाशनी हो जाने पर छान कर रख लें और इसका सेवन करें।
तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए भी बहुत गुणकारी हैं। इसके लिए तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिला लें और इस मिश्रण को चाट कर खाएं। इसके सेवन से सूखी खांसी और दमे में लाभ होता है।
गलत खान पान या प्रदूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। खास तौर पर बच्चों को ये समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ आदि समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर हैं। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियां और 1 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर उसका सेवन करें।
अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है या फिर आप अपचन या अजीर्ण की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार लें।
मूत्र में जलन होने पर भी तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। तुलसी के बीज और जीरे का चूर्ण 1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ लेने से पेशाब में जलन, मूत्र पीऊ या वस्तुशोध में लाभ होता है।
पीलिया या कामला एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज ना करवाने से ये आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाती है। 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया में लाभ होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से भी पीलिया में आराम मिलता है। पथरी की समस्या होने पर भी तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की 1 से 2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। ये पथरी को बाहर निकालने में मददगार होती है। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें, बल्कि नजदीकी डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने हमारा कार्यक्रम सुना विज्ञान की डगर। اس کاریکرم کو پیش کیا مریم مہردادی اور اختر عباس نے۔ اب سبھا کے سماپن سے پورو مکھ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر۔ حسین امیر عبداللہیان نے بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی ہے۔ آیت اللہ احمد خاتمی کہتے ہیں کہ ایران کے شترو برباد ہو چکے ہیں، 50 لاکھ سے ادھک شردھالو اس بار اربعین میں کربلا پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان میں چرچ پر ہونے والے حملے کی الازہر نے کڑے شبدوں میں نندا کی ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پریاس آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں اپنے وچار آپ ہمیں اوشی لکھ بھیجیے گا۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ سویدھا کے انوسار وزٹ کر سکتے ہیں parstoday.ir/hi۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ تو اسی کے ساتھ سبھا سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔